ओम शांति। प्यारे बाबा का जनवरी मास जब आता है, स्मृति स्वरूप बनने की प्रेरणा बाबा हमें देना आरंभ कर देता है। बाबा की हर बात स्मृति में आते ही बाप समान बनने के लिए हमें उत्साहित कर देता है, क्योंकि जीवन के अंदर हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य यही है कि हमें अपनी स्थिति को अलौकिक स्थिति या कर्मातीत स्थिति बनानी है। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें अपनी ऐसी स्थिति बना देनी है। बाबा ने शुरू से ही, जब से शिव बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया, तब से ही कर्मयोगी बनकर के दिखाया। कभी भी बाबा ने हम बच्चों को कर्मयोग का त्याग करने के लिए या कर्म का त्याग करने के लिए कहीं इशारा भी नहीं दिया, परंतु साकार में भी उस समय जो ब्रह्मावत्स थे यज्ञ के अंदर, उन सभी को भी बाबा ने कर्मयोगी कैसे बनना है ये प्रैक्टिकल आचरण से सिखाया। यज्ञ के अंदर छोटे से छोटे कार्य को भी किस तरह से करना है, क्योंकि जब तक कर्मयोगी नहीं बनते हैं तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। ये यात्रा है ही, ब्राह्मण जीवन की यात्रा है ही कर्मयोग से कर्मातीत बनने की। कर्म संन्यास से कर्मातीत कभी कोई बन नहीं सकता है। कोई अगर चाहे कि भाई हम कर्मातीत बनने के लिए सेवा को छोड़ दे, कर्म करना छोड़ दे और पूरा समय योग में बैठने का प्रयास करे, उससे कभी भी कर्मातीत नहीं बन सकते। परंतु कर्म योगी जैसे बनते जाएंगे उतना कर्मातीत बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर कर्म में हम अपने आप को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी स्थिति कहां तक पहुंची है। गीता के अंदर भी ये सभी जानते हैं कि गीता माना ही कर्म योग कैसे करना है, उसकी गहराई स्पष्ट की गई है। तो कर्म योगी कैसे बनना है, कर्म योग माना क्या, उसकी परिभाषा क्या है, तो कर्म योगी बनने के लिए सबसे पहले स्वधर्म में स्थित होना आवश्यक है। आत्मा का स्वधर्म है ही सात गुण, और इस स्वधर्म में जब हम स्थित होकर के ये सातों गुणों की ऊर्जा या उस गुण स्वरूप होकर के ये गुणों का प्रवाह हमारे हर कर्म में नित्य प्रवाहित होना चाहिए। ज्ञान युक्त होकर के कर्म करना, पवित्र वृत्ति के साथ कर्म का आचरण करना, प्रेम से जो कर्म करें हम प्रेम से करें, लगाव में आकर के नहीं लेकिन वो कर्म प्यार से करें, तो उस कर्म के अंदर क्वालिटी आ जाती है, वो कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। साथ ही साथ मन की स्थिति शांति की हो, सुख मन स्थिति हो, कर्म करते समय आनंद उमंग उत्साह में स्थित होकर के कर्म करें और शक्ति स्वरूप होकर के, कमजोरी के आधार पर नहीं, शक्ति स्वरूप होकर के कर्म करें। दुनिया में अक्सर लोग इसी बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कर्म से योग होना चाहिए, उसको कर्म योग मानते हैं, या दूसरा समझते हैं कर्तव्य पालन कर लेना, जिम्मेवारी से कर लेना, उसको कर्म योग समझते हैं। परंतु आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कर्तव्य पालन कर लेना, कर्तव्य पालन माना अपनी गृहस्थी को ठीक से संभालना, या उसमें काम चोरी नहीं करना, जो जॉब कर रहे हैं उसमें कर्मनिष्ठ से कर्म हो करें, उसको वो कर्म योग समझते हैं। परंतु अगर दुनिया में देखें तो पशु पक्षी भी अपना कर्तव्य निष्ठ है, कर्तव्य पालन करते हैं। आज पंछी को अगर देखे तो एक चिड़िया भी अपने गृहस्थ को अच्छी तरह से संभाल रही है, अपने बच्चों के लिए दाना चुग करके ले आती है, उनको उड़ना सिखाती है, क्या वो कर्मयोगी कहेंगे? उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाता है। तो कर्तव्य पालन करना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और मनुष्य ने भी अगर यही किया तो उसमें कर्म योग कैसे कहेंगे? तो कर्म से योग नहीं, कर्म में योग शामिल हो, और कर्म में योग को शामिल करने के लिए स्वधर्म में स्थित होकर के जब हम कर्म करते हैं, यानी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं, तो देह भान से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। पर धर्म में स्थित होकर के कर्म करना, यानी मैंपन में आकर के कर्म करना, देह अभिमान में कर्म करना, ये कर्म बंधन क्रिएट करता है, ये कर्म हमें बांधने वाला हो जाता है। और जब अनेक इस तरह के बंधन हमारे बनते जाते बनते जाते बनते जाते, तो धीरे धीरे वही कर्म बंधन कर्म भोग का अनुभव कराता, या हिसाब किताब में बांधने वाला वो कर्म हो जाता है। और अनेक प्रकार के हिसाब किताब के बंधन में हम बनते जाएंगे तो वो कर्म भोग की अनुभूति कराएगा, क्योंकि बंधन ही भोगना का अनुभव कराता। तो कर्म पर बंधन पर धर्म में स्थित होकर के जब कर्म का आचरण करते हैं, मैंपन की भावना या देह अभिमान में स्थित होकर के जब कर्म का आचरण करते, तो ये कर्म बंधन क्रिएट करता जो कर्म भोगना की ओर हमें ले जाता है और भोगना का अनुभव कराता। लेकिन जितना स्वधर्म में स्थित, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हम कर्म का आचरण करते, वो हमें कई प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाला है। और बंधन मुक्त स्थिति या जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है, यही अनुभव कराता है। जो हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म का बल जमा करता है, क्योंकि स्वधर्म में किया गया कर्म, उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होती है, तो त्रुटि न होने के कारण वो कर्म श्रेष्ठ हो गया, तो वो जमा का खाता अनुभव कराता। और जो जमा का खाता है वही उस कर्म भोग को काटने वाला होता है। आज ब्राह्मणों को बाबा कर्म श्रेष्ठ करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो जाने अनजाने पन में अनेक कर्म बंधन हमने बांधे हैं, हिसाब किताब बांधे हैं, उससे छुड़ाने वाला या उस भोगना के दर्द को क्षीण करने वाला कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ, कर्म योग में स्थित होकर के कर्म करने से हम अपने चारों ओर एक ऐसा ओरा क्रिएट करते हैं समर्थी का, कि वो भोगना अगर आई भी, निमित्त मात्र आएगी, लेकिन वो दुख दर्द का, परेशानी का, तड़पाने वाला अनुभव नहीं करा सकता है। साकार बाबा की बात याद आती है कि जब बाबा अव्यक्त हुए और 13 दिन तक बाबा को भोग लगाया गया, गुलजार दादी जब भोग लगाते थे तो एक दिन दादी ने बाबा से जाकर के पूछा वतन में कि बाबा, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी। तो उस समय बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और बाबा ने कहा कि कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी और ऐसी जबरदस्त लड़ाई थी, भोगना दर्द का अनुभव कराना चाहते थे बाबा को, लेकिन कर्म योग यानी योग बल इतना पावरफुल था कि वो हर दर्द को जैसे काट रहा था, वो दर्द फील करने नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे ये लड़ाई में, कर्म भोग और कर्म योग की इस लड़ाई में, भोग का हाथ पैर ढीला होने लगा, भोगना के हाथ पैर ढीले होने लगे और कर्म योग विजयी हो गया और सहज तन से आत्मा अलग होकर के उड़ के चली गई वतन में। यानी हम सभी ब्राह्मण ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी कहीं गफलत में भी आकर के हमने किया हुआ है, जो व्यर्थ के खाते में चला जाता है या जो पाप कर्म के खाते में चला जाता है, कभी परचिंतन के वश हो गया, कभी परमत के प्रभाव के वश हो जाते हैं, कभी परदर्शन हो जाता है, तो ये छोटे छोटे विकर्म के खाते भी हमारे बनते जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेटेड हो जाता है तब ये भोगना का स्वरूप बनता है, जो हमें दुख दर्द देने का प्रयास करता है। और इसीलिए कर्म योग की शक्ति से ही जितना श्रेष्ठ कर्म का खाता, जमा का खाता होगा, ये भोगना को दुख दर्द का अनुभव कराने नहीं देगा। और ये बात ब्रह्मा बाबा ने अनुभव में सुनाई, लेकिन मातेश्वरी मम्मा का अनुभव भी शायद यही था कि मम्मा को उस समय कैंसर जैसी बीमारी हो गई। कई बार जो पुराने मम्मा के साथ थे वो अपने अनुभव में सुनाते हैं इस बात को कि मम्मा कभी कभी उस दर्द के कारण सारी रात सो नहीं पाती थी, बीमारी ऐसी थी। और क्योंकि कोई इलाज नहीं होता था उस समय, तो वो भोगना जैसे बहुत दर्द पहुंचाने का कार्य करता था, लेकिन मम्मा अपनी आत्मस्थिति में स्थित होकर के जैसे उस दर्द को काटती जाती थी। रात रात अगर सो नहीं पाती थी तो योग युक्त होकर के उस दर्द को काट करके जैसे समाप्त कर देती थी। और इसीलिए अंतिम दिन भी हम जानते हैं ये बात सभी कि जब बाबा ने मम्मा से कहा अंतिम दिन 24 जून को कि मम्मा आज सभी बच्चों को अंगूर बांटना है, तो उस समय मम्मा जब प्यार से अंगूर बांट रही थी, है ना, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय वो कैंसर का दर्द कैसा महसूस कराने का, वो दर्द की फीलिंग देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब मम्मा अंगूर बांट रही थी एक एक को, तो कहा जाता है कि मम्मा के चेहरे पर दुख या दर्द की कोई रेखा मात्र नहीं थी, और मुस्कुराते हुए आत्मस्थिति में स्थित मम्मा ने जैसे एक एक को अंगूर बांटा। तो ये प्रैक्टिकल कर्म, बाबा यही बात क्यों मम्मा को श्रीमत के रूप में दिया कि मम्मा अंगूर बांटना है, हर बच्चे को आज अंगूर देना है। आज दूसरा कोई होता तो ये शायद कह देता आप रेस्ट करो, और रेस्ट करने के लिए कर्म से हमें छुड़ा देते, लेकिन बाबा ने अंतिम घड़ी तक भी कर्म से न खुद छूटे न मम्मा को भी छूटने दिया। और ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जब आप वो कर्म करते हैं और आत्मस्थिति में स्थित होकर के कर्म करेंगे, तो वो दुख दर्द के ऊपर विजयी प्राप्त कर लेंगे, यानी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। नॉर्मली दूसरे होते थे तो यही कहते रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, काम नहीं करो, कोई किसी से मिलना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं एडवाइस दिया। बाबा ने अंतिम घड़ी तक भी मम्मा से अंगूर बंटवाए, ये सेवा करवाई। यानी ये प्रैक्टिकल कर्म का आचरण करके दिखाया कि कर्म योग से ही कर्मातीत स्थिति उस दुख दर्द के ऊपर, क्योंकि अगर रेस्ट करते थे तो शायद वो दर्द ज्यादा अनुभव कराने का प्रयास करते, तो योग युक्त स्थिति नहीं होती थी। तो स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म का आचरण करना, माना जमा का खाता हम करते जाते हैं, और उसी से ही उस कर्म भोग को काट सकते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात के कर्म योग का आचरण करने के लिए जो विभिन्न स्वमान हमें मिले हैं, उन स्वमान में स्थित होकर के उस स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर के कर्म का आचरण करना। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये स्वमान अगर हमने सुबह ले लिया, या मैं पवित्रता की मूर्ति हूं या देवता हूं, ये स्वरूप, ये स्वमान हमने ले लिया, तो ये स्वरूप हमारा कितना समय इमर्ज रूप में रहा कर्म करते समय, और कर्म करते समय वो कर्म किसी भी तरह से हमें भयभीत न करे, कोई भी परिस्थिति के वश होकर के हम उसमें अधीनता को प्राप्त न करे, इसको कहा जाता स्वमान की स्थिति पर, सीट पर सेट हो करके कर्म का आचरण करना। ये है कर्म योग। कर्म योग माना ये नहीं कि मैं सारा दिन योग में बैठ के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर, ये रटना है, ये रटने की बात नहीं है, लेकिन उस स्वरूप में आकर कर्म करना, तब तो पता चले कि हां मेरी कर्म करते समय वो स्वमान की स्थिति कितनी रही, कर्म छोड़ करके मैं बैठ करके मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये कितना भी अभ्यास कर लूं, उससे कोई मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन जाती हूं। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में सेट होकर के मैंने वो कर्म किया, मैं पवित्र आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ये स्वमान में स्थित होकर के मैंने वो कर्म किया, ये है कर्म योग। कर्म और ये श्रेष्ठ स्थिति, योग माना श्रेष्ठ स्थिति, तो कर्म और श्रेष्ठ स्थिति दोनों कंबाइंड हो जाए और तब हमारा हर कर्म इतना श्रेष्ठ बनने लगे। तीसरा, जैसे आज बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी कि कर्म योगी माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार। खाली ये कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार की बात नहीं है, लेकिन आज बाबा ने उससे भी सूक्ष्म स्थिति बताई कि मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी संपूर्ण अधिकार। कहने का भावार्थ के मन के ऊपर अधिकार माना मन कोई भी प्रकार के व्यर्थ चिंतन न चला सके या उत्पन्न न कर सके कर्म करते समय, इतनी समर्थ स्थिति हमारी हो कि व्यर्थ का संकल्प मात्र भी, ये भी नहीं कि पता नहीं वाला संकल्प भी अंदर नहीं उत्पन्न हो सकता है, इतनी हमारी समर्थ स्थिति या मन इतने श्रेष्ठ या सकारात्मक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हम अपने संकल्पों को ले आए और पॉजिटिव संकल्पों के साथ कर्म में आए, ये है मन के ऊपर अधिकार। बुद्धि के ऊपर अधिकार यानी योग युक्त होकर के कर्म करना। और योग युक्त किसको कहा जाता है? योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त, दिव्य बुद्धि युक्त। दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए जब कर्म का आचरण करते हैं और संस्कार के ऊपर विजयी, यानी कोई भी स्वभाव संस्कार, पुराना स्वभाव संस्कार मुझे अधीनता में न ले आए, या उस पुराना स्वभाव या संस्कार के वश होकर के हम कर्म न करें, उसको कहा जाता संस्कार के ऊपर अधिकार। तो स्थूल इंद्रियों के ऊपर तो राज्य अधिकारी है हो ही, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर भी हमारा संपूर्ण अधिकार कर्म करते समय, उसको कहते कर्म योगी। कर्म योगी उसी का नाम है और ये कर्म योग का आचरण बाबा हमें सिखाता है। हम अक्सर ब्राह्मण आत्माएं साधारण कर्म में आ जाते हैं, साधारण स्मृति में आ जाते हैं और साधारण बुद्धि के साथ हम कर्म का आचरण करते हैं, इसीलिए पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हैं और ये हमारे कर्म भोग को क्रिएट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ये कर्म भोग को क्रिएट करता है। लेकिन जितना हम अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उतना ही हम ऊपर उठ जाते हैं, जिसको कर्मातीत अवस्था माना अलौकिक, लौकिक स्थितियों से या लौकिक स्मृति से जब परे की स्थिति हो जाए उसको कहा जाता अलौकिक स्थिति, कर्मातीत। और हम ब्राह्मणों का अगर ये लक्ष्य है कि कर्मातीत बनना है, तो कर्मातीत का मतलब तीन बातें हैं। कर्मातीत माना देहातीत, इंद्रियातीत, संसारतीत। देहातीत माना देह की अनुभूति से या देह की फीलिंग में आकर के या देह भान में आकर के, मैंपन के भाव में आकर के कर्म करना नहीं, लेकिन उससे ऊपर देहातीत कि मैं आत्मा हूं, इस स्मृति बहुत पावरफुल रूप में आ जाए और निरंतर ये स्थिति रहे, तब कर्मातीत के समीप जा सकेंगे। देहातीत, देह की फीलिंग से भी अपने आप को ऊपर उठाना और वो फीलिंग के अंदर अधिकतर रहना, निरंतर रहना। जैसे बाबा के लिए, साकार बाबा के लिए हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि बाबा रात में अपने दरबार लगाते थे, है ना। कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया, इसीलिए जिसने कर्मेंद्रिय जीत या इंद्रियातीत स्थिति बनाई उसी का नाम है इंद्र। भक्ति मार्ग में भी उसका नाम है इंद्र और ब्रह्मा का भी एक नाम इंद्र है। इंद्र माना जिसने इंद्रिय जीत, इंद्रियातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो है इंद्र मास्टर। तो क्यों ये स्थिति दिया, तो कहा बाबा दरबार लगाते थे और मन मंत्री से पूछते थे कि आज तेरे राज्य कारोबारियों ने तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं दिया। ये अपने दरबार लगा करके अपना सेल्फ चेकिंग करते थे बाबा कि आज कहीं दृष्टि ने, वृत्ति ने, हाथों ने, मुख ने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया, कोई इंद्रिय ने तुम्हें परवश तो नहीं किया, कोई इंद्रियां तुम्हें गुलाम तो नहीं बना सकी। तो ये मन मंत्री से बाबा पूछते थे कि आज तेरे राज्य कारोबारी किस स्थिति में रह करके कार्य करते रहे, और इस तरह से बाबा अपना सेल्फ चेकिंग चार्ट जिसको कहा जाए वो बाबा खुद भी करते थे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी कई बार मुरली में ये श्रीमत देते हैं कि बच्चे अपना चार्ट देखो, क्योंकि बाबा ने खुद इसका अभ्यास किया था। और इसी के आधार पर दूसरे दिन अगर कोई कर्मेंद्रिय ने कोई चंचलता की तो दूसरे दिन उसके ऊपर डबल अटेंशन का पहरा बाबा लगा देता था। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन के पहरेदारों को टाइट करो, ये अटेंशन के पहरेदार ढीले हो गए हैं इसीलिए कर्मेंद्रिय अपनी मनमानी कर रही है। तो कर्मेंद्रिय कहीं मनमानी तो नहीं कर रही है, तो हम सभी ब्राह्मण माना कर्मेंद्रिय की मनमानी आधा कल्प बहुत चलाई, दो युग बहुत हमें परेशान करती रही, चलाते रहे, लेकिन अब कर्मेंद्रिय की मनमानी नहीं चलेगी। इसको कहते इंद्रियातीत या इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत। इसीलिए देखो कुछ लोग जितेंद्रिय बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि जितेंद्रिय बनो, तो ज्ञान का भी पूरा आधार कर्मातीत बनना अर्थात जितेंद्रिय बनना। तो जहां हम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले, तो देहातीत, इंद्रियातीत और संसारतीत, यानी संसार से भागना भी नहीं है, रहना भी संसार में ही है। देह और देह के जो लोग हैं उसी के बीच में रहना है, हमें देहधारियों के बीच में ही रहना है, उससे दूर भाग करके जंगल में नहीं जाना है, ये बाबा का ज्ञान नहीं है। लेकिन देह में रहते हुए, देहधारियों के बीच में रहते हुए, देह से संबंधित जो भी भौतिक साधन है या जो भी वैभव है उनके बीच में ही रहना है, लेकिन उनके बीच में रहते हुए उनके आकर्षणों से परे, उसको कहते इंद्रियातीत, देहातीत या संसारतीत। वो आकर्षण हमारी स्थिति को खींच के नीचे न ले आए, कर्मातीत उसी का नाम है कि उस फीलिंग से ऊपर, उस आकर्षण की फीलिंग से ऊपर। दूसरा, संसार में क्या होता है, जब लोगों के बीच में हम होते हैं तो लोगों के बीच में मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति ये होता ही है, डुप्लीकेशन, ये विरोधाभास चलता ही रहता है। तो जब उसकी फीलिंग से ऊपर आ जाते हैं, उसको कहते कर्मातीत, संसारातीत, यानी किसी ने मान दिया, किसी ने अपमान किया। मान दिया तो उसके प्रभाव में भी नहीं आ जाना है और उसी नशे में आ जाए, मान दिया और उस नशे में आ जाए और कल किसी ने अपमान किया तो सारा क्या गैस निकल जाता है और मूड ऑफ की स्थिति आ जाती है और इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाए। इसको कर्मातीत नहीं कहते हैं, लेकिन कर्मातीत माना मान हो या अपमान हो उस फीलिंग से ऊपर। जब उस फीलिंग से अपने आप को ऊपर, तो जब लोगों के बीच में रहेंगे ये सब चीजें आएंगी, तभी तो पता चलेगा कि हां मैं कर्मातीत के नजदीक हूं या नहीं हूं। स्तुति निंदा, किसी ने स्तुति किया तो बहुत खुशी हो गई, किसी ने निंदा किया तो बहुत अपसेट हो गए, सारा दिन हमारा अपसेट रहे, टेंशन में आ गए, या कुछ उलट सुलट हमें सोचने पर मजबूर कर दिया या बोलने के लिए मजबूर कर दिया, तो कर्मातीत स्थिति से बहुत 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 दूर है हम। लेकिन जब उसके फीलिंग में हम नहीं आते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं और उससे ऊपर, क्योंकि अंत घड़ी तक निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख ये मिलना ही है, अंत घड़ी तक ही आना ही है। चार लोग अच्छी बात भी करेंगे तो चार लोग बुरी बात भी करेंगे, कुछ निंदा भी करेंगे। हर एक इंसान की बुद्धि का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हम चाहे कि ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा नहीं बोले, बोलेंगे, स्वाभाविक है कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, बुद्धि की क्षमता हर एक की अपनी अपनी है। अब किसी की बुद्धि अभी तक अगर व्यर्थ में होगी तो उसके व्यर्थ में जाकर के गुण अवगुण का प्रदर्शन करके वो निंदा भी करेंगे या अपमान भी करेंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता इतनी है। तो उस बात को समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस पावर हमारा बढ़ जाए, समा लेना या स्वीकार कर लेना। बाबा के सामने अनेक प्रकार के बच्चे थे, कभी बाबा के सामने किसी किसी की शिकायतों को लेकर के आते थे, बाबा सुनते हुए न्यारे हो जाते थे, सुनते हुए नहीं सुनते थे, देखते हुए नहीं देखते थे। इसको कहते हैं संसारातीत। दृश्य अनेक हमारे सामने हलचल के आएंगे और बाबा ने कहा है अंतिम घड़ी तक तो काफी हलचल होने वाली है, चाहे प्रकृति की हलचल, चाहे समस्याओं के माध्यम से हलचल की स्थितियां, अनेक प्रकार की जो दुनिया में चल रही है वो हलचलें दिखाई देंगी। ये सारी हलचल, हाँ, पिछले मुरली में, पिछले संडे की मुरली में कितने प्रकार के चिल्लाने का स्वरूप बाबा ने बताया था, किस किस रूप से लोग चिल्ला रहे हैं दुनिया के अंदर, कौन कौन, पूरा एक लिस्ट बाबा ने दिया था कि चलाना और चिल्लाना, सहारों को लेकर के चलाना और अनेक प्रकार के दुख दर्द में चिल्लाना, तो ये हलचल तो आनी ही है अंत घड़ी तक, और ये बढ़ने वाली है, ये कम होने वाली नहीं है। तो जब ये बढ़ने वाली है तो उसके प्रभाव में मैं ना आ जाऊं, और उसके प्रभाव में आकर के अपनी स्थिति को हम हलचल में न ले आए। इसको कहते कर्मातीत स्थिति के नजदीक। लेकिन ये हलचल को देखते हुए भी हमारे मन के अंदर उन सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होती रहे, निंदा करने वाला, अपमान करने वाले के प्रति भी नित्य हमारे मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होती रहे, उसको कहते संसार अतीत, या जिसको दूसरे शब्द में कहा उपराम या साक्षी अवस्था। उपराम या साक्षी अवस्था, ये है कर्मातीत स्थिति। तो इसीलिए कर्म योग के आचरण से ही कर्मातीत स्थिति, रहना उन सब के बीच में है, लेकिन बीच में रहते हुए अपनी कर्म इंद्रिय के ऊपर और सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर भी इतना अधिकार, ये है कर्म योग। हाँ, तो स्वधर्म के आधार पर कर्म करना, स्वमान में स्थित होकर के कर्म करना और कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके कर्म करना, ये है कर्मयोग। चौथी बात कर्मयोग माना, श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ते हुए हर कदम चलना, अमृत वेले से रात्रि तक। बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दी हुई है, सबसे इजी कर्मयोगी बनना हो, सहज योगी बनना हो, क्योंकि सहज योग कर्म योग साथ साथ जाता है, तो सबसे सहज से सहज तरीके से अगर मुझे कर्म योगी बनना हो तो और कुछ नहीं, अमृत वेले से रात्रि तक हर कर्म के लिए श्रीमत बाबा ने दी हुई है, उस श्रीमत अनुसार ही चलते चले, उस श्रीमत के मीटर को लेकर के हम अपने आप को देखते रहे और कर्म करते चले, ये है सहज कर्म योगी जीवन, कि श्रीमत कहीं छूटे नहीं, श्रीमत रूपी हाथ हमारे हाथ में से छूटे नहीं, श्रीमत का हाथ पकड़ करके ये हाथों द्वारा कर्म का आचरण करते रहे। तो ये श्रीमत हमें हर बात से सेफ रखेगी, हर प्रकार के विकर्म करने से सेफ रखेगी, और श्रीमत के साथ साथ जब दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते जाते, विवेक युक्त होकर के कर्म करते जाते, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जैसे जैसे हम बुद्धि के अंदर धारण करते जाते हैं, तो ज्ञान बुद्धि में धारण होने से दिव्य बुद्धि बन जाती है, विवेक पावरफुल हो जाता है, सही गलत के लिए जैसे दुविधा नहीं रहती है, सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, हमें दूसरे की बुद्धि का सहारा लेना नहीं पड़ता है कि भई आप क्या समझते हैं, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जब हम दूसरे की बुद्धि का सहारा लेते हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो आत्मा कर्मातीत बनी हुई है, वो अपनी बुद्धि से जवाब देंगे और अपनी बुद्धि से जवाब देंगे और उसकी बुद्धि के हिसाब से मैंने कर्म किया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म में सेट नहीं हो सकता है, इसलिए दूसरे का सहारा लेते हुए चलने के बजाय ज्ञान युक्त बुद्धि ऐसी हमारी पावरफुल बनाए। ज्ञान हर बात का स्पष्ट मिला हुआ है कि ये कर्म मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्पष्ट है ज्ञान। विवेक पावरफुल हो जाता है जब योग युक्त होकर के चलते हैं, दिव्य बुद्धि के प्रयोग से चलते हैं, तो जब विवेक पावरफुल हो जाता तो सही गलत को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के व्यर्थ संकल्प कहां से आरंभ होते हैं, व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है, व्यर्थ संकल्प तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारा दिव्य बुद्धि के आधार पर कर्म का आचरण नहीं, या श्रीमत से हट करके हम कर्म का आचरण, मन मत या पर मत की प्रभाव में आकर के कर्म का आचरण करते हैं, तो श्रीमत छूट जाती है, तब व्यर्थ की उत्पत्ति होती है, और इसीलिए जब व्यर्थ उत्पन्न होता है तो व्यर्थ कभी कभी अधोगति की ओर हमें ले जाते हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त अक्सर कई बार ब्राह्मण इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेते हैं कि कहीं कहीं झूठ बोल करके सोचते हैं युक्ति युक्त बोल रहे हैं। झूठ बोलने को युक्ति युक्त नहीं कहा जाता है, वो कर्म योगी नहीं है। झूठ भी बोल रहे हैं और सोचते हैं हम युक्ति युक्त बोल रहे हैं, वो युक्ति युक्त कहेंगे क्या? वो योग युक्त है क्या? झूठ बोलने को कभी योग युक्त युक्ति युक्त नहीं कहा जाता है। और वो छोटे छोटे झूठ जो है काफी एक्यूमुलेट हो करके कभी कभी हमारे मन और बुद्धि के अंदर इतने व्यर्थ को क्रिएट करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए आज के बाद अगर आप सच नहीं बोल पाते हैं तो अंतर्मुखी होकर के चुप रहना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप झूठ का सहारा लो। झूठ का सहारा नहीं लो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी मनस्थिति श्रेष्ठ होगी तो कोई आपसे झूठ बुलवा नहीं सकता है, या आपको कोई ऐसी बात पूछ नहीं सकता है कि जिसके लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़े। युक्ति युक्त का मतलब ही है ज्ञान युक्त होकर के जवाब देना, झूठ बोल करके नहीं। ज्ञान युक्त, ज्ञान क्या कहता है उसको स्पष्ट या त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के हम जवाब दे, उसको कहते युक्ति युक्त जवाब। बाकी कई बार हमने ये बात महसूस किया है कि कई लोग झूठ बोलते जाते हैं, बाबा ने कहा ना युक्ति युक्त होकर के चलना। इसको युक्ति युक्त के, ये तो छोटे छोटे विकर्म बहुत एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, और उसकी भी सजा तो भोगनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसकी सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। ज्ञान युक्त होकर के चलो, युक्ति युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त होकर के चलो। और जिसमें झूठ बोलने का मतलब नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आप ये बोलने से झूठ बोल रहे हैं, और जिस दिन सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने इस बात के लिए झूठ बोला, उसका भाव आपके प्रति रहेगा, उसका रिस्पेक्ट आपके प्रति रहेगा, आपके प्रति न रिस्पेक्ट रहेगा न भाव रहेगा, और उनको लगेगा भगवान के बच्चे ये झूठ बोलते इतना तो क्या रहा, भगवान का नाम प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने या उसका नाम क्या कहे डुबोने के निमित्त बने, किस किसके लिए निमित्त बने? तो ये श्रेष्ठ कर्म हुआ या विकर्म हुआ? सोचो कर्म की गुह्य गति को। और इसीलिए युक्ति युक्त बोलना माना ज्ञान युक्त होकर के बोलना, और ज्ञान युक्त का मतलब झूठ बोल करके नहीं है। ज्ञान युक्त का मतलब ही है जिसमें उसका भी भला हो और हमारा भी भला हो, है ना। कई बार कई लोग इसकी डेफिनेशन ये कर लेते हैं कि युक्ति युक्त में अगर थोड़ा झूठ बोल दिया उसका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन खुद का तो नुकसान हो रहा है। तो युक्ति युक्त बोल का मतलब न उसका नुकसान हो न मेरा नुकसान हो। मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि झूठ बोल करके मैं अपने विकर्म का खाता बढ़ाती जाऊं तो ये मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसीलिए न उसका नुकसान होना चाहिए लेकिन मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका अगर कल्याण हो तो मेरा भी कल्याण हो। ये है युक्ति युक्त बोल, चढ़ती कला उन्नति जिसमें होती है उसको कहा जाता है युक्ति युक्त। बाकी अनेक प्रकार से हम झूठ का सहारा, और क्योंकि कई बार एक झूठ बोलने में 100 झूठ बोलना पड़ता है तो कितना विकर्म हो जाएगा सोचो। ये युक्ति युक्त कहेंगे या विकर्मों का खाता इकट्ठा करने की बात कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसीलिए आज के बाद इस बात के ऊपर भी हमारा विजयी, ये संस्कार के ऊपर भी विजयी आत्मा, चुप रहो, नहीं बोलना चाहो तो कम से कम झूठ का सहारा नहीं लो, लेकिन अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर के उस आत्मा को इतना शुभ वाइब्रेशन दो कि वो बोलने की या पूछने की आपको हिम्मत न करे। बाबा की याद में स्थित हो जाओ। जितना बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे बाबा को सौंप देंगे कि बाबा अब इस बात को आपको सुलझाना है, बाबा अपने आप कोई ना कोई युक्ति रचेगा जो सुलझा देगा। आप भी कर्म के भागी क्यों बन रहे हो? इसीलिए ये जो छोटी छोटी गलतियां हमारी हो रही है, कई बार ये गलतियां इकट्ठी होते 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 बहुत बड़े कर्म भोग का हिस्सा बना देती है। तो कर्म योग नहीं है, और कर्म भोग अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर विकर्मों का खाता इतना बढ़ता जाए जो कर्म भोग को अनुभव, तो कर्मातीत कब बनने वाले हैं? क्या ऐसे छोटे छोटे झूठ बोल बोल करके हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा संसार अतीत, कि संसार में रहते हुए, उन सब के बीच में रहते हुए भी हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां का सहारा भी न ले, तभी कर्मातीत स्थिति तक पहुंच सकेंगे। करके देखिए, शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगी आपको, शुरू में थोड़ा आपको महसूस भी होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको अपना संस्कार बनाते जाएंगे तो वो छोटे छोटे झूठ से भी आप उपराम हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों का झूठ लेने का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये संस्कार इतना कड़ा कर देता है आगे चल करके, और अंतिम समय तक भी अगर झूठ बोलते रहे तो कर्मातीत कभी नहीं बन सकेंगे। इसलिए कहा कर्म योग से कर्मातीत तक पहुंचना है। कर्म योग का आचरण माना श्रीमत दिव्य बुद्धि युक्त योग युक्त युक्ति युक्त होकर के कर्म करना, तब कर्म योगी कहलाते हैं और उसी से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में जो कर्म करे खुशी से करे, प्यार से करे, और बाबा की याद में करते जाए, जितना याद की शक्ति उसमें भरते जाएंगे, जितना बाबा को साथी बनाकर साथ लेकर के कर्म करते चलेंगे, बाबा हर कदम साथ चलने के लिए तैयार है, बाबा हर क्षण हमें अपनी मदद ऑफर करने के लिए तैयार है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, हिम्मत का एक कदम बढ़ाते चलो और बाप की मदद का अनुभव करते, ये है यथार्थ कर्म योग, कि जिसमें बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा का हर कदम में कदम जैसे महसूस करते हुए आगे बढ़ना। बाबा भूल जाए और फिर हम कहे क्या करें। एक बार एक बहन साकार बाबा के सामने थी, तो बाबा ने जैसे खेल खेल में, बाबा तो हमेशा कभी भी कर्म को भारी होकर के नहीं करते थे, खेल खेल में जैसे कर्म योग का आचरण करते थे। तो बाबा ने उसको कोई कार्य दिया, वो कार्य नहीं कर पा रही थी, असमर्थी उसकी थी, तो इसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, इसको याद किया, 10 लोगों को याद कर लिया उसने। जब कोई नहीं था तब लास्ट में उसने कहा ओ बाबा, तो बाबा ने कहा मुट्ठी सारे देहधारियों को याद कर लिया और लास्ट में बाबा तेरे को याद आया, है ना? कहने का भावार्थ, बाबा ने कहा पहले बच्ची तुम्हें बाबा को याद करना चाहिए, तुम सारे देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट में बाबा कहती है, अरे पहले बाबा को याद करो ना। तो इसका मतलब तेरा बुद्धि योग तो ये 10 लोगों के अंदर फंसा हुआ था कि ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरे, जब सबने मना कर दिया तब तुम वो बाबा करती है, तो कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? इसको याद करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको, जब सब मना कर देते तब कहते ओ बाबा, ओ बाबा, है ना? वो दादी जानकी की बात लास्ट में सुनाना चाहती हूँ। दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है कि बाबा का ये दो पोज है, हिस्ट्री हॉल में आप देखेंगे बाबा खड़ा है, तो खड़े में बाबा के दो पोज दिखाया जाता है, एक बाबा का हाथ आगे है और एक बाबा का हाथ पीछे है। तो कहा जब हम पहले बाबा को याद करते हैं और हिम्मत का कदम उठाते हैं तो बाबा का हाथ आगे, माना बाबा मदद करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पहले सारे देहधारियों को याद करके फिर कहेंगे ओ बाबा, तो बाबा हाथ पीछे कर लेता है कि समय का योग निकल गया। जिस समय के योग में बाबा मदद कर सकता था वो समय बीत चुका, और वो घड़ी बीत जाने के बाद जैसे दुनिया में भी समय का योग जब आता है उसमें अगर कर्म किया जाए तो सफलता मिलती है, समय बीत जाने के बाद अगर होश आता है तो सफलता नहीं मिलती है। तो उस समय बाबा भी हाथ पीछे कर देता है कि बच्चे समय का योग निकल गया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना। तो पहले बाबा को याद करना और कर्म करना, ये है यथार्थ कर्मयोगी जीवन। तो कर्मयोग में 5 बातें हमने देखी, स्वधर्म के आधार पर कर्म करना, स्वमान की स्थिति में कर्म करना, कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार रख करके कर्म करना, सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर भी अधिकार, दिव्य बुद्धि के आधार पर कर्म करना, और बाबा की याद में हर कर्म करना। हर समय पहले बाबा याद आवे, पीछे देहधारी याद आवे, ये नहीं पहले देहधारी याद आवे पीछे बाबा याद आवे, तो बाबा हाथ पीछे करके खड़ा रहेगा, साक्षी हो जाएगा। तो बाबा मदद जब कर सकता है तो करो, ले लो बाबा की मदद, ताकि पीछे अगर देहधारी को याद भी किया, यानी पहले बाबा को याद किया, तो बाबा कोई ना कोई देहधारी को निमित्त बना करके वहां भेज देगा मदद करने के लिए भी, सही व्यक्ति सही समय पर भेज देगा, भले वो परिचित हो या न हो उसको बाबा भेज देगा, अपना कार्य करा लेगा। लेकिन अगर पहले देहधारियों को याद किया फिर बाबा को याद किया तो क्या होगा, हाँ कर्म कूटना पड़ेगा। इसलिए कर्म कूटना नहीं है, कर्म योगी बन करके कर्म करना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
दिन 18 जनवरी का हो, दिन 18 जनवरी का संपूर्ण बन करके वतन में चले गए। दिन 18 जनवरी का संपूर्ण बन करके वतन में चले गए। दिन 18 जनवरी का संपूर्ण बन करके वतन में चले गए, वतन में चले गए। प्यारे ब्रह्मा बाबा परिष्ठा बन करके वतन में चले गए।
मेरे में मिलना हो, बाहों में
چلے گئے وطن میں چلے گئے پر چلنا دے کر کے سندے بدلا اپنا پرویش دردش چلے گئے وطن میں چلے گئے بہت ہی